بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج مورخہ 28 اپریل سن 2023 ہے. آج ہم کتاب خونی سوداگر بچوں کے لیے ناول ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف سلیم احمد صدیقی ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 139 ہیں. آپ یہ کتاب اقرا عبد الرحمن کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں اس نمبر پر رابطہ کریں, 0306-7878-222, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ 1, خونی سوداگر بچوں کے لیے ناول. سلیم احمد صدیقی, فروز سنز لمیٹڈ, قائم شدہ 1894, لاہور, پاکستان. ولرڈ پرائس کے ناول گوریلا ایڈونچر سے ماخوذ, مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ, لاہور, باہتمام عبدالسلام خان, پرنٹر اور پبلشر. گوریلے کی تلاش. اگر یوں کہا جائے کہ کامران اور عدنان جنگلی جانوروں کی صحبت میں پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے تو بے جانا ہوگا. کامران 19 سال کا صحت مند نوجوان تھا اور عدنان کی عمر 14 سال تھی. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا وہ اپنے والد سولت مرزا کے کاروبار کو بڑے شوق سے اور حیرت سے دیکھتے تھے. سولت مرزا جنگلی جانوروں کا کاروبار کرتے تھے, جو وہ مختلف ملکوں کے جنگلوں سے پکڑتے تھے اور انہیں چڑیا گھروں اور سرکس والوں کے ہاتھ بیچ دیتے تھے. کامران اور عدنان نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا. جب بھی سولت مرزا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کسی مہم پر جاتے, یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اب وہ اپنے کام میں اس قدر ہوشیار ہو چکے تھے کہ جانور پکڑنے کی مہم پر والد کے بغیر بھی جانے لگے تھے. یوں بھی ان کے والد اب ذرا بوڑھے ہو چلے تھے اور جنگل کی مشکل زندگی ان کی صحت کے لیے اچھی نہ تھی. کامران اور عدنان پچھلے 2 ماہ سے افریقہ کے ایک ملک کینیا آئے ہوئے تھے. دراصل ایک چڑیا گھر کو افریقہ کے شیروں کی ضرورت تھی اور سولت مرزا نے کامران اور عدنان کو اسی مہم پر افریقہ بھیجا تھا. یہ مہم بڑی خطرناک تھی, لیکن دونوں بھائی اس سے پہلے کئی مہمیں سر کر چکے تھے, لہٰذا وہ اس کام سے بالکل نہ گھبرائے, بلکہ انہیں خطروں سے کھیلنے میں اب کچھ زیادہ ہی مزہ آنے لگا تھا. شیروں کو چڑیا گھر کے آدمیوں کے حوالے کر کے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ سولت مرزا کا ایک لمبا چوڑا تار ملا. تار کی عبارت کچھ یوں تھی, ہمارے ملک کے ایک سرکس کو تار کی عبارت کچھ یوں تھی ہمارے ملک کے ایک سرکس کو افریقہ کے چند جانوروں کی ضرورت ہے. ہاتھی اور شیر یہاں موجود ہیں, 1-2 گوریلے, رنگور, استہے, شترمرغ اور اسی طرح کے دوسرے جانور پکڑ کر وطن لے آؤ. یاد رہے کہ گوریلا پہاڑی ہو, میدانی نہیں. تمہارا والد. تار پڑھتے ہی کامران اور عدنان نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. انہیں افریقہ سے جاتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا اور وہ کچھ دن اور یہاں رہ کر جنگلی جانور پکڑیں گے اور اس کام سے لطف اٹھائیں گے. یہ سوچ کر دونوں بھائی بہت خوش ہوئے. کامران نے اسی شام جورو سے اس نئی مہم کے بارے میں بات چیت کی. جورو ان کے 30 افریقی ملازموں کا سردار تھا. یہ لوگ کامران نے یہیں آ کر ملازم رکھے تھے. آج ان سب کی چھٹی ہونے والی تھی. جورو نے جب یہ نئی خبر سنی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا دی. وہ بھی نئی مہم کی تیاری کرنے لگے. ویسے یہ مہم ہے خاصی خطرناک, جورو نے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا. کیا دوسرے جانور پکڑنا شیر پکڑنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ کامران نے حیرت سے پوچھا. ہاں صاحب, میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے. ایک تو مختلف جانور الگ الگ جگہ تلاش کرنے پڑیں گے اور ایک جگہ ہوئے بھی تو بھی ایک دم نہیں پکڑے جا سکیں گے. دوسری بات یہ کہ مختلف جانوروں کو پکڑنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں مزہ بھی زیادہ ہی آئے گا, عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا. بالکل میرا بھی خیال یہی ہے, کامران نے کہا. लेकिन मेरा ख्याल आपसे मुख्तलिफ है, जोरू संजीदगी से बोला। अजदहा पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसी तरह गोरीले की तलाश और फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। गोरीले सिर्फ एक जगह मिल सकते हैं। किस जगह? कामरान ने पूछा। मुल्क कांगो के जंगलों में, जोरू ने कहा। दरियाए कांगो और विरंगा के आतिश फशां पहाड़ों के दरमियान फैले हुए घने जंगलों के सिवा गोरीले और कहीं नहीं मिल सकते। अफ्रीका का ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ अमूमन वहशी लोग रहते हैं और वो गैर मुल्कियों के सख्त दुश्मन हैं। बहरहाल हमें अपना काम करना है, अदनान ने हौसले से कहा। कामरान ने जोरू की कमर पर थपकी देते हुए कहा, हम लोग खतरों से नहीं डरते, बस सुबह ही उस इलाके की तरफ चल पड़ेंगे। जैसी आपकी मर्ज़ी, जोरू उठते हुए बोला। जब वो कीनिया से कांगू पहुँचे तो उन्हें मालूम हो गया कि जोरू ने जो कुछ कहा था वो गलत ना था। यहाँ के जंगल बहुत घने थे और रास्ते बेहद दुश्वार। रास्ते में वो सिर्फ रमन गाबू नाम के कस्बे में थोड़ी देर रुके, जहाँ उन्होंने दो काम किए। एक तो वहाँ के अफसर से जानवर पकड़ने का इजाज़तनामा हासिल किया और दूसरे एक रहनुमा की खिदमात हासिल की। यह रहनुमा आंद्रे था। आंद्रे यूरोप के एक मुल्क का रहने वाला था, लेकिन वो बहुत सी जबानें जानता था और कई साल से अफ्रीका में आने वाले शिकारियों और सयाहों की रहनुमाई कर रहा था। इस शख्स को एक नज़र देखकर कोई अच्छी राय कायम करना बहुत मुश्किल था। उसके होंठ बहुत पतले थे, छः फुट से भी ज़रा ऊंचा था और उसने बड़ी बड़ी मूछें पाल रखी थीं जो किनारों पर जाकर नीचे को झुक गई थीं, जैसे कि दुश्मन के आगे हथियार डाल रही हों। उसकी भवें भी बहुत घनी और खमदार थीं, लेकिन उसकी सबसे अजीब और नुमाया निशानी उसकी शीशे की बनी हुई आँख थी। उसकी एक आंख एक बार एक शिकारी की रहनुमाई करते हुए चीते के पंजे का शिकार हो गई थी और उसकी जगह उसने हल्के सब शीशे की मस्नूई आंख लगवा ली थी। उससे मुलाकात करने वाले आदमी को यूं महसूस हुआ था जैसे वो उसे घूरे जा रहा हो, लेकिन आंद्रे घूरता नहीं था, शीशे की आंख की वजह से घूरता हुआ लगता था। उसकी एक आंख जितनी बेजान थी, दूसरी उतना ही ज़्यादा जानदार। कामरान ने आंद्रे को बताया कि वो पहाड़ी गोरीला पकड़ना चाहते हैं, तो उसने कहा, मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ जहाँ गोरीले पाए जाते हैं। मैं अमूमन मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की खुशकिस्मती से आजकल फारिग हूँ और आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। वैसे कांगू में आजकल खासी गड़बड़ है, आप लोगों को ऐसे वक्त में यहाँ ना आना चाहिए था। गड़बड़ की वजह से वो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं जो अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुल्कों से सैर व तफरीह के लिए आए थे। लेकिन आप क्यों नहीं गए? आप ये भी तो यूरोप से आए हैं। आप भी तो यूरोप से आए हैं, कामरान ने पूछा। मैं गड़बड़ से डरने वाला नहीं, आंद्रे ने अकड़ते हुए कहा। मैं बहादुर हूँ, ना मैं अफ्रीकियों से डरता हूँ और ना गोरीलों से। वैसे गोरीला मिलना आजकल इतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहा। क्यों? अदनान ने पूछा। इसलिए कि बहुत से गोरीले मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही बाकी हैं जिनका ढूंढना आसान काम नहीं, और आप लोग तो हैं भी जवान। इस काम में तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, आंद्रे ने कहा। हम भी डरने वाले नहीं, कामरान ने कहा। यह हमारी पहली मुहिम नहीं है, इससे पहले हम कई मुहिमें सर कर चुके हैं। हम किसी मुश्किल से नहीं डरते, मगर पहाड़ी गोरीला बड़ा ख़तरनाक जानवर होता है, आंद्रे ने कहा। मैदानी गोरीला तो मगरबी साहिल के पास गर्म मरतूब इलाके में रहता है, लेकिन पहाड़ी गोरीला आतिशफशां पहाड़ों की ढलानों पर रहता है। ये मैदानी गोरीले से 2 गुना बड़ा होता है और इसके जिस्म पर 8-8 इंच लंबे बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। इसे पकड़ना आसान काम नहीं, क्यों ना आप मैदानी गोरीला पकड़ लें? ये गोरीले जंगलों में मिल जाएंगे, कामरान ने कहा। हम तो पहाड़ी गोरीला ही पकड़ेंगे, चाहे ये साहिब आतिशफशां के दहाने पर ही क्यों ना रहते हों। वह हंसने लगा। जोरू ने और अदनान ने भी हंसी का एक कहकहा लगाया। आंद्रे ने बुरा सा मुंह बना लिया। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, कामरान ने कहा। असल में दुनिया भर के चिड़ियाघरों में 219 मैदानी गोरीले हैं, लेकिन पहाड़ी गोरीले सिर्फ 13 हैं, इसीलिए उनकी कीमत मैदानी गोरीलों से कई गुना ज़्यादा है। वो काफ़ी देर तक गोरीलों के बारे में बातें करते रहे। अगले दिन शाम पड़ने से पहले पहले वो माँ अपने साजो सामान के मकीनों पहाड़ की 10,000 फुट के लगभग बुलंदी पर पहुँच गए, और रात होने तक उन्होंने एक लकड़ियों का कमरा बना लिया। इस वक्त कामरान, अदनान और आंद्रे मेज़ के गिर्द बैठे चाय पी रहे थे। उनके अफ्रीकी मुलाजिम जोरू के साथ ज़रा फासले पर बैठे आग ताप रहे थे। उनसे ज़रा दूर एक छोटी सी झील थी, जिस पर जूं जूं रात होती जा रही थी तरह तरह के जानवर पानी पीने के लिए आ रहे थे। अदनान ने खिड़की नुमा सुराख में से दूर झील की तरफ देखते हुए कहा, वहाँ तरह तरह के जानवर हैं, जंगली सूअर भी नज़र आ रहे हैं, भैंस भी हैं और कई जानवर और भी, लेकिन गोरीला एक भी नहीं। अव्वल तो गोरीले ज़्यादा पानी नहीं पीते, कामरान ने उसे बताया। दूसरी बात यह कि वो कैंप के इतने नज़दीक नहीं आते। मेरा तो ख्याल है कि अगर आप पहाड़ी गोरीले को देख लें तो एक दफ़ा तो डर ही जाएंगे, आंद्रे ने अदनान की तरफ देखते हुए कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं आंद्रे साहब, अदनान ने कहा, मैं जानता हूँ कि गोरीला शक्लो सूरत में आदमी जैसा होता है। बस, आंद्रे चिल्लाया, यही तो आपकी गलती है। उसकी शक्ल बेशक आदमियों जैसी होती है, लेकिन वो आदमियों की तरह काम नहीं करता। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 7-8 मन वज़नी गोरीला, जिसका कद 7 फुट के करीब हो और बाहें लंबी लंबी हों, अगर वो अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप ज़मीन पर जमे के जमे रह जाएंगे, या शायद भाग खड़े होंगे। हाय, मैं तो भाग ही पड़ूंगा, अदनान ने एकदम कहा। नहीं, भागना तो हिमाकत होगा, अगर आप खड़े रहें तो गोरीला शायद आपको नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से गुजर जाए, लेकिन भागने की सूरत में वो आपको नहीं छोड़ेगा, आंद्रे ने बताया। और हाँ, अदनान, कामरान ने कहा, पिस्तौल चलाने की कोशिश करना भी ऐसे में मौत को दावत देना है। वो क्यों? गोरीला इतना तेज़ और फुर्तीला होता है कि हमला करने वाले से पहले ही उस पर हमला कर देता है, और वो हथियारों को बिल्कुल आदमियों की तरह पहचानता है, कामरान ने समझाया। आंद्रे ने चौंक कर कहा, आप गोरीलों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन मेरी मालूमात सिर्फ किताबी हैं, कामरान ने कहा, क्योंकि पहाड़ी गोरीला हमारे वालिद ने आज तक नहीं पकड़ा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएं। क्यों? कामरान ने हैरत से पूछा। इसलिए कि पहाड़ी गोरीले को मारना उसको ज़िंदा पकड़ने से ज़्यादा आसान है, आंद्रे ने कहा। आप तो खुद जानते हैं कि दुनिया भर के चिड़ियाघरों में सिर्फ 13 पहाड़ी गोरीले हैं। आंद्रे की हिमाकत। कामरान और अदनान रात भर पहाड़ी गोरीले पकड़ते रहे। ज़ाहिर है कि वो ख्वाब देख रहे थे। सुबह बेदार होते ही उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और आंद्रे और जूरू के साथ पहाड़ी जंगल में घूमने चल दिए, ताकि पहाड़ी गोरीलों का सुराख लगाया जा सके। आंद्रे का कहना था कि वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए वो अकड़ अकड़ कर उनकी रहनुमाई कर रहा था। अब वो खासे घने जंगल में आ चुके थे। मेरा ख्याल है हम कैंप से 3-4 मील दूर आ चुके होंगे, आंद्रे ने कहा। हाँ, लगता तो यही है, कामरान ने घड़ी देखते हुए कहा। अब शायद हमें गोरीलों का सुराख मिल जाए। गोरीले ज़्यादा घने जंगल में रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पर किसी किसी जगह तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच रही है। लेकिन हमें सुराख मिलेगा कैसे, अदनान ने कहा। तुम जानते हो कि गोरीला बहुत भारी जानवर होता है। जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है, वहाँ उसके पाँव तले झाड़ियाँ और पौधे कुचल जाते हैं, कामरान ने छोटे भाई को बताया। लेकिन इस तरह तो सारे जानवरों के चलने से पौधे और झाड़ियाँ कुचल जाती होंगी, अदनान ने सवाल किया। हाँ, अब के जोरू ने जवाब दिया, लेकिन हर जानवर के पाँव पड़ने का अंदाज अलग होता है, और मैं उनका फ़र्क बता सकता हूँ। लो भाई, मिल गया सुराख, आंद्रे चिल्लाया। कामरान, अदनान और जोरू आंद्रे की तरफ दौड़े, लेकिन नज़दीक पहुँचते ही हंसने लगा। सुराख तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ चीते का। फिर तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, कामरान ने चौकन्ना होते हुए कहा। नहीं, इन निशानियों से पता चलता है कि वो यहाँ से जा चुका है, जोरू बोला। वो थके थके कदमों से आगे बढ़ने लगे। अभी उन्हें चलते हुए 10-12 मिनट ही हुए होंगे कि अदनान ने कहा, गोरीला 2 पांव पर चलता है या 4 हाथों पैरों पर? क्यों, खैरियत तो है? कामरान ने हंसते हुए पूछा। इसलिए कि अगर वो 4 हाथों पैरों पर चलता है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से कोई ना कोई गोरीला गुजरा है। जब उन्होंने अदनान के बताए हुए निशानों को गौर से देखा तो यही तय किया कि पहाड़ी गोरीले के पाँव के ही निशानात हैं। इसका मतलब ये था कि उन्हें उसका सुराग मिल चुका है। वो इन निशानों को देखकर उनके साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद निशान गुम हो गए। अभी वो और निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कहीं आसपास से एक बुरसरार सी आवाज़ सुनाई दी। उनके कान खड़े हो गए। जोरू आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की सम्त बढ़ने लगा। झाड़ियाँ इधर उधर हटाते हुए बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगे। ज़रा आगे बढ़े ही थे कि सामने एक छोटी सी नदी दिखाई दी। ये आवाज़ उधर ही से आ रही थी, मगर नहीं, ये नदी के बहने की आवाज़ ना थी, ये तो पानी के टपकने की सी आवाज़ थी। यूँ लगता था जैसे कोई आदमी किनारे के पास खड़ा नहा रहा हो। पर यहाँ आदमी कहाँ? ज़रा गौर से देखने पर उन्हें यूँ लगा जैसे कोई आदमी उनकी तरफ से पुश्त किए बैठा हो। अब उनकी समझ में आने लगा था, वो आदमी जो नदी के किनारे बैठा था वही पानी पी रहा था और ये पुरसरार आवाज़ इसी वजह से पैदा हो रही थी। लेकिन इस पहाड़ी जंगल के इतने घने हिस्से में किसी आदमी का क्या काम? हो सकता है कि कोई कामरान और अदनान की तरह इजाज़त नामा लेकर यहाँ जानवर पकड़ने आया हो, मगर नहीं, ऐसे आदमी इस तरह नदी के किनारे बैठकर पानी नहीं पीते। उनके पास तो पानी वगैरह के लिए थर्मास होते हैं। फिर इस घने जंगल में ये पुरसरार हस्ती कौन है? ये सारी बातें कामरान के जहन में इसलिए आईं कि पुरसरार आदमी के और इन लोगों के दरमियान खासी ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं, जिनके बायस वो उन्हें साफ नज़र नहीं आ रहा था। जोरू ज़रा एहतियात से कदम बढ़ाता आगे चला, लेकिन 2-4 कदम आगे चलकर रुक गया। यूं लगता था जैसे उसके पाँव में गड़े गड़ गए हों। उसने हाथ के इशारे से आंद्रे, कामरान और अदनान को अपने पास बुलाया और साथ ही दूसरे हाथ की उंगली मुंह पर रख कर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। कामरान नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा। अदनान उसके पीछे था और रहनुमा आंद्रे सबसे पीछे। जोरू के पास पहुंचकर उन सब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्हें इस बात का यकीन ना था कि उनकी मंजिल इतनी जल्द पहले ही दिन यूँ उनसे चंद गज के फासले पर आ खड़ी होगी। सामने नदी पर कोई इंसान पानी नहीं पी रहा था। ये एक पहाड़ी गोरीला था जिसका वज़न 7-8 मन से किसी भी सूरत कम ना होगा। वो बैठा हुआ था, लेकिन इस हालत में भी वो इतना ऊंचा था जितना एक आदमी खड़ा हो। उसका कद 7.5 फुट से कम ना होगा। अरे, ये तो देव है, अदनान ने आहिस्ता से कहा। खूब नाम रखा है तुमने, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी ने बचपन में हमें काले देव की कहानी सुनाई थी, बस इसे देखकर वही काला देव याद आता है। फिर तो इसका नाम काला देव होना चाहिए, अदनान ने कहा। बस तो इसका नाम काला देव है आज से, कामरान ने इस तरह कहा जैसे वो पहाड़ी गोरीले का नहीं किसी पालतू कुत्ते का नाम रख रहा हो। अब मसला ये था कि इन लोगों के अफ्रीकी मुलाजिम इनके साथ नहीं थे, वो भी सिर्फ सुराग लगाने आए थे और यहाँ इन्हें पहाड़ी गोरीला मिल गया था। अब वो इसे पकड़ें कैसे? आओ कैंप से सामान और आदमी ले आएँ ताकि उसके जाने से पहले पहले इसे पकड़ने का बंदोबस्त करें, कामरान ने कहा। मेरा ख्याल है काले देव का ख़ानदान भी यहीं कहीं होगा, अदनान ने कहा। अगर हम आसपास तलाश करें तो उसका घर ढूंढ सकते हैं और फिर सामान और आदमी लाकर उसे पकड़ने का बंदोबस्त कर सकते हैं। आपका ख्याल ठीक है, आंद्रे ने कहा। जाहिर है कि हमारे वापस आने तक काला देव यहाँ बैठकर हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। क्यों ना हम चारों एक एक सिमत में चले जाएं, उसका घर तलाश करें और फिर वापस यहीं आ जाएं, जोरू ने तजवीज़ पेश की। कामरान ने सोचते हुए कहा, यह बात मुनासिब है, लेकिन इस तजवीज़ पर अभी पूरी तरह अमल भी ना हुआ था। यानी अभी वो 5 मिनट अपनी अपनी सिमत में चले थे कि अदनान ने उन सबको बुला लिया। उसे काले देव का घर मिल गया और वो बहुत उदास था। इस उदासी की वजह से कामरान की समझ में इस उदासी की वजह कामरान की समझ में उस वक्त आई जब वो तीनों अदनान के साथ काले देव के घर के पास पहुँचे। घर क्या था, बस लंबी लंबी घनी झाड़ियों से चारों तरफ से छुपी हुई एक खुली जगह थी, और इस जगह के बीचों बीच दो मादा गोरेलाएँ और एक बच्चा मरा पड़ा था। उन्होंने चारों तरफ गौर से देखा, खुली जगह होने के बायस यहाँ ज़मीन पर पाँव के निशानात नज़र आ रहे थे, आदमियों के पाँव के निशानात। न जाने किन जालमों ने इन्हें गोली का निशाना बनाया था। अभी तक खून इनके ज़ख्मों से बह रहा था, जिससे पता चलता था कि इनको थोड़ी देर पहले ही मारा गया था। जाहिर है कि उन आदमियों ने गोरीले के एक बच्चे को ज़िंदा हासिल करने के लिए बाकी सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। अभी काले देव को शायद अपने ख़ानदान की हलाकत का इल्म ना था, और ना यूं इतने सुकून से नदी पर पानी ना पी रहा होता। गोरीले आदमियों की तरह खुशी और गम महसूस कर सकते हैं और गुस्से में भी आ सकते हैं। अगर काला देव जानता होता कि उसके बीवी बच्चे मार दिए गए हैं, तो वो इस तरह पानी पीने के बजाय जंगल में कातिलों को तलाश करता। आखिर उन लोगों ने बड़े गोरीले को पकड़ने के बजाय बच्चे को क्यों पकड़ा? अदनान ने कामरान से पूछा। इसलिए कि उन्हें बड़ा गोरीला पकड़ने का तरीका ना आता होगा, कामरान ने कहा। बड़ों को मारकर छोटे बच्चे को पकड़ लेना ज़्यादा आसान है, पर वो बच्चे का क्या करेंगे? अदनान की समझ में अभी तक पूरी बात नहीं आई थी। भाई छोटा हो या बड़ा, पहाड़ी गोरीला तो पहाड़ी गोरीला ही होता है, उसकी कीमत हज़ारों रुपए से कम नहीं, कामरान ने बताया। अचानक उनको गोरीले की आहट सुनाई दी। काला देव अपने घर वापस आ रहा था। आंद्रे, कामरान, अदनान और जोरू चारों के चारों बुत बने खड़े रहे। उन्हें ये उम्मीद ना थी कि गोरीला इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अब क्या किया जाए? वो वापस नहीं पलट सकते थे, क्योंकि उस सूरत में काला देव उन पर झपट पड़ता और शायद इन्हें अपना दुश्मन समझकर उनकी बोटी बोटी कर डालता। उनकी खैरियत इसी में थी कि चुपचाप खड़े रहें। काला देव जब वहाँ आया और उसने अपने बीवी बच्चों को लेटा देखा, तो वो ये ना समझ सका कि वो मरे पड़े हैं। वो आहिस्ता से अपनी बीवी के पास गया और उसे हाथ से हिलाया, जैसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अचानक जैसे उसकी समझ में सब कुछ आ गया हो, वो अपने दोनों हाथ अफसोस के अंदाज में मलने लगा। इसके बाद उसने दूसरी मादा को देखा और अपने बच्चे को। उसके बाद वो सर पकड़ कर बैठ गया, जैसे अपना घर उजड़ने का सोग मना रहा हो। अदनान ने इशारे से कहा कि अब उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन कामरान ने इशारे ही से मना कर दिया और फिर उनके कान में आहिस्ता से कहा कि गोरीले से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि कोई हरकत ना की जाए। अगर वो लोग ज़रा भी हरकत करते तो गोरीला उन्हें हलाक कर देता। अचानक काला देव उठा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो चारों बेहरकत खड़े थे। गोरीला उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। कामरान सबसे आगे खड़ा था। गोरीले ने नज़दीक पहुंचकर एक हाथ से उसे दाएं तरफ को ज़ोर से धकेल दिया और फिर एक कदम आगे बढ़कर जोरू को बाएं हाथ से धक्का देकर परे फेंक दिया। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर उसने अदनान को ज़ोर से परे धकेला और फिर हाथ हवा में लहराता हुआ आंद्रे की तरफ बढ़ा। आंद्रे के हाथ में पिस्तौल था। इसी पिस्तौल को देखकर वो बाकियों को इधर उधर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आंद्रे ने आओ देखा न ताओ एकदम गोली चला दी। गोरीले ने एक दर्दनाक चीख मारी। गोली उसके कंधे में घुस गई और अपने ज़ख्म को नोचता चीखता वापस मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। ये आपने क्या हिमाकत की, कामरान चिल्लाया। आपको पता है कि मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो ना था, आंद्रे ने लरजते हुए कहा। वो अभी तक खौफजदा था। आपने काले देव को हमारा जानी दुश्मन बना दिया है। अब वो ये समझने लगा होगा कि हम ही ने उसके ख़ानदान को मारा है। गोरीला अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। आखिर आपने फायर क्यों किया, अदनान ने आंद्रे से कहा। आंद्रे सर झुकाए खड़ा था। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि गोली काले देव के कंधे ही में रह गई। जब तक वो गोली मौजूद रहेगी, उसके कंधे में दर्द होता रहेगा और वो हमसे इंतकाम लेने की सोचता रहेगा, कामरान ने कहा। अदनान इंतकाम का लफ्ज़ सुनकर कुछ घबरा सा गया। कामरान ने उसे तसल्ली दी और वो सब कैंप की तरफ चल दिए। खौफनाक असदहा। अदनान रात भर करवटें बदलता रहा और वो आराम से ना सो सका। सुबह होते ही वो उठ बैठा और कामरान से कहने लगा, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कामरान ने पूछा। यह सुबह ही सुबह कहाँ पहुँचे हुए हो? पहुँचा हुआ तो कहीं नहीं, अदनान बोला। मेरा मतलब है कि हमें ज़ख्मी गोरीले की मदद करनी चाहिए। कामरान आंखें फाड़ फाड़ कर अदनान की तरफ़ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अदनान कहना क्या चाहता है। आपने कहा था ना कि जब तक गोली काले देव के जिस्म में मौजूद रहेगी, वो हम लोगों से इंतकाम लेने की फ़िक्र में रहेगा, अदनान ने कहा। लिहाजा उसके इंतकाम से बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि किसी न किसी तरह उसके कंधे से गोली निकाल दी जाए। पागल ना बनो, कामरान ने अदनान को समझाया। उसके नज़दीक जाए बगैर हम गोली नहीं निकाल सकते, और उसके नज़दीक इसलिए नहीं जा सकते कि आंद्रे ने उस पर फायर किया था। आंद्रे से किस तरह छुटकारा पाना चाहिए, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ना वो फायर करता। तुम जानते हो अदनान के हम आंद्रे को गाइड बनाकर यहाँ लाए हैं, और माहदे के मुताबिक हमें उसे अपने साथ रखना पड़ेगा। फिर हमें कुछ और सोचना चाहिए। हाँ, एक बात मेरी समझ में आई है, हम आंद्रे से तो छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन उसका पिस्तौल ज़रूर गायब कर सकते हैं, ताकि आइंदा वो कोई नया मसला ना खड़ा करे। ये बात मुनासिब मालूम होती है। हमें मौका पाते ही उसका पिस्तौल गायब। अदनान की बात मुंह की मुंह में ही रह गई कि उसी लम्हे जोरू हाँपता हुआ आया और बोला, जनाब असदहा। कहाँ? कामरान ने खड़े होते हुए पूछा। उधर, जोरू ने उंगली से झील की तरफ इशारा करते हुए कहा। झील में है? अदनान की थकन एक पल में गायब हो गई, और वह कामरान और जोरू के साथ झील की तरफ चल दिया। आंद्रे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे थे। असदहा अभी तक झील में मौजूद था। उसका सर पानी के ऊपर था और बाकी जिस्म पानी के अंदर, लेकिन सर से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। सवाल ये है कि इसको पानी से बाहर कैसे लाया जाए, अदनान ने कहा। ठहरो, मैं अभी उसे खुश्की पर बुलाता हूँ, कामरान सर खुजाता हुआ बोला। क्या मतलब? क्या आप उसे असदहे साहिब कहकर खुश्की पर बुलाएंगे? अदनान हंसा। कामरान ने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा किया और जोरू से कहा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा पकड़ लाओ। झील के किनारे जंगल था और तरह तरह के जानवर वहाँ मौजूद थे। जोरू ने चंद ही मिनटों में हिरन का एक बच्चा पकड़ लिया और कामरान के पास ले आया। कामरान ने उसके गले में रस्सी बांधी और उसे झील के किनारे खड़ा कर दिया। रस्सी का दूसरा सिरा उसने एक अफ्रीकी मुलाजिम को देकर एक दरख्त के पीछे बिठा दिया और उससे कह दिया कि आवाज़ सुनते ही बच्चे को खींच ले। बाकी लोगों को उसने समझाया कि इशारा पाते ही वो असदहे को अपने हाथ में इस तरह जकड़ लें कि वो बल ना खा सके। हिरन के बच्चे को झील के किनारे खड़े हुए अभी 2-3 ही मिनट हुए होंगे कि असदहा उसकी तरफ बढ़ने लगा और पलक झपकते ही किनारे पर आ गया। खुश्की पर चढ़कर वो हिरन के बच्चे को हड़प करने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि कामरान ने कहा, खींचो। दरख्त के पीछे छुपे हुए अफ्रीकी मुलाजिम ने झट रस्सी खींच ली और हिरन का बच्चा घसीट लिया। असदहा शिकार हाथ से निकलता देखकर आगे बढ़ा ही था कि कामरान ने इशारा किया और इर्द गिर्द खड़े हुए सारे अफ्रीकी मुलाजिम उसके लंबे और मोटे जिस्म पर झपट पड़े। लेकिन अगले ही लम्हे असदहा उनके हाथों से छूटकर करीब ही एक बिल में घुस गया। उसका जिस्म इतना चिकना था कि काफ़ी देर बाद उनकी समझ में आया कि असदहा उनके हाथों से आखिर निकला कैसे। अब मसला ये था कि असदहे को बिल में से कैसे निकाला जाए। मैं बताता हूँ कि उसे कैसे निकाला जाए, जोरू ने कहा। अगर हम इसके बिल के मुंह पर अदरक रख दें तो ये बखुद बखुद उसकी बूह की तरफ खिंचा चला आएगा। कामरान को ना तो इस बात पर यकीन आया और ना उन लोगों के पास अदरक ही थी जो इस तरकीब को आजमाया जाता। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए कि ज़मीन में हल्की हल्की गड़गड़ाहट हुई और वो जगह जहाँ कामरान उठा खड़ा था चंद लम्हे के लिए हिली। असल में ये इलाका पहाड़ी था और यहाँ की पहाड़ियों में कई आतशफशां पहाड़ भी थे, इसलिए अक्सर यहाँ जलजला आता रहता था। इससे पहले के कामरान जलजले का जिक्र करता, उसकी नज़र बिल के मुंह पर जा पड़ी जहाँ से शायद जलजले के झटकों के बायस असदहे की दुम का कोई एक 1.5 फुट हिस्सा बाहर निकल आया था। कुदरत ने उनकी ऐन मौके पर मदद की थी। कामरान ने इशारा किया और अफ्रीकी मुलाजमों ने असदहे की बाहर निकली हुई दुम को मजबूती से पकड़ लिया। अब इसे पूरी कुव्वत से खींचो, लेकिन सीधा रखने की कोशिश करना, कामरान ने हुक्म दिया। काम शुरू हो गया। यूं लगता था जैसे रस्सा कशी का मुकाबला हो रहा हो। असदहा बिल की तरफ ज़ोर लगा रहा था और वो लोग उसे बाहर घसीट रहे थे। क्या ये असदहा जहरीला नहीं होता? अदनान ने कामरान से पूछा। नहीं, कामरान ने कहा, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन अगर यह आदमी को अपने जिस्म में रस्सी की तरह लपेट ले तो जान से मार सकता है। इसके दांत भी बहुत तेज़ और नुकीले होते हैं, अगर इंसान के जिस्म में खुब जाएं तो गोश्त उतारे बगैर वहां से नहीं निकलते। फिर तो अदनान कुछ कहने लगा था, कामरान ने उसकी बात काट कर कहा, मगर ये अमूमन अपने शिकार को काटता नहीं, उसे सालम निकल जाता है। क्या इसका मैदा इतना मजबूत होता है? हाँ, कामरान ने कहा, इसके अलावा ये एक बार पेट भरने के बाद उस वक्त तक शिकार नहीं करता जब तक इसकी खुराक हजम ना हो जाए। रस्साकशी के इस मुकाबले को ये लोग जीतते जा रहे थे। अजदहे के जिस्म का जो हिस्सा बाहर आया था वो दरमियान में एक जगह से फूला हुआ था, मालूम होता है उसने आज सुबह ही कुछ खाया है, कामरान ने अदनान को बताया। देखो, अभी तक इसका पेट फूला हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब ये खाना हजम होने तक किसी पर हमला नहीं करेगा। अदनान ने पूछा। हाँ, कामरान बोला, बाज़ लोग तो इसे पालतू जानवरों की तरह रखते हैं, ये बड़ी आसानी से मानूस हो जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हैरत है, देखने में इतना खौफनाक। और अदनान की बात दरमियान ही में रह गई और क्योंकि उसी लम्हे एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हुआ। मज़ीद रिकॉर्डिंग के लिए अगला पार्ट सुने।